आगे देखिए, का अन्ना हुम, का अन्ना हुम, ये तीन लफ्ज हैं। काफ तशबी का हर्फ है, अन्ना वही है जो शुरू में थे आयत के, इन्नल्लाहा युहिब्बु, मैंने वहां जिक्र किया था ना कि शुरू में आएगा तो इन्ना, बीच में आ जाएगा जुमले के तो अन्ना, होम वो, जमीर मुनफसिल जमा की, गोया के वो सारे क्या हैं, बुनयानुन, बुनयानुन दीवार हैं। असल ये लफ्ज है जिस पे अब सारा वक्त बात हमें करनी पड़ेगी, लेकिन जरा सा समझिए, बुनयान का लफ्ज क्या है, दीवार के लिए आता है, लेकिन असल में इमारत को कहते हैं, तामीर करना, टू बिल्ड के मानों में। कुरान पाक में ये लफ्ज बहुत जगह इस्तेमाल आता है, मसलन वह बनई ना फौकाकुम सब बंशी दादा, हमने बनाए तुम्हारे ऊपर सात आसमान, बस समा बनई ना हबी दिन, हमने अपने हाथों से आसमान को बनाया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बनई ना का लफ्ज बनाने के मानों में है, टू बिल्ड के मानों में, और बस समाई व मा बना हा, जो आसमान और जो हमने उसको बनाया। इसी तरह सूरत तौबा की आयत 110 में एक इमारत का तज़किरा है जिसको मस्जिद दिरार कहा गया, ला यज़ालु बुनयानुहुम अल्लज़ी बनाऊ, दो दफ़ा देखिए लफ्ज़ बुनियान और बनाऊ दोनों तामीर के मानों में, रीबतन फी कुलूबिहिम, कि ये इमारत हमेशा इनके दिलों में खटक का और हिलजान का जरिया बनती रहेगी। यानी वो कोशिशें जो बज़ाहर इस्लाम के नाम पर हों, देखने में लोगों को लगे कि ये दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन मोटिव्स कुछ और ही हैं, इंसेंटिव्स और फ़ायदे तो कोई माल के हैं या कहीं ज़ात के, तो वो चीज़ें सुकून और ख़ुशी नहीं देती, और वो किनारे पे खड़ी इमारतों की तरह है। इस पे आगे एक आयत भी मैंने आपके लिए रखी थी कि आप कभी उसको भी फ़ायदा उठा ले, और यहाँ तो है ये, का नहुम बुनजानुम मरसूस, सीसा पिलाई भी दीवारें। जन्नत के अंदर जो बाला खाने होंगे ना, उसके लिए कुरान में क्या आता है, लहुम ओरफुम मिन फौकिहा ओरफुन मबनिया। अब ये सब लफ्ज सिर्फ इसमें आप बना को देखिए, आयतों को पूरी ना देखें, एक ही लफ्ज कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में आता है आपके मेरे सामने। महल्लात होंगे जन्नत में जिसके बालाहाने होंगे और वो बनाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बैतुल्ला को भी अलबनीजा कहते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप देख लीजिए, इसके फिर बहुत डिफरेंट एंगल है। लफ्ज बेटा भी इसी से है, बिन और इबन, ये बुनियादें होती हैं, ये आपकी इमारतें हैं। आज हम खोखली इमारतों को कैसे संभालें कि हमारे अपने बच्चे हमारी इमारत नहीं बन गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्या कहा था बाप ने, या बुनैया इन्नी अरा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, क्या बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह करता हूँ। तो बेटे को बुनियाद कहने की वजह, आपको दोनों का रब्त मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा भी चूंकि अपने बाप की एक इमारत होता है, इसलिए फिर इसको बंद कहते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, फर्स्ट फ्लोर बेटा तो सेकंड फ्लोर पोता तो थर्ड फ्लोर पड़ पोता, नस्लें चलती हैं ना ऊपर, पूरा लीनियत चलता है इंसान का। चलिए इसके लफ्ज देख लीजिए, बनाने के लिए अरबी में क्या आता है, यहां तो आ गया ना बुनजानु मरसूस, दीवार कह लीजिए। अरबी जुबान में बनाने के लिए क्या लफ्ज आता है, जाला, आम लफ्ज है, अल्लज़ी जाला लकुम अल-अर्ध फिराशा। बना का लफ्ज आता है, ये भी हमने पढ़ा है, वस्समाउ बनई ना हा बेई दिन। सना का लफ्ज आता है और इस नाक आता है, वस न इल्फुल का भी आयुनी ना वह जी ना, या वस तना तु का ली नफसी। फिर अखज आता है, इतखजा की सूरत में अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को क्या कहा था हजरत यूसुफ के मामले में, औनत तखीजहू वलदा, कि हम उसको बेटा बनाएंगे। जाला का लफ्ज, फर्क देखिए सबका, जाला आम लफ्ज है, हर मौके पर इस्तेमाल होता है, कुछ भी बनाने के लिए, बना इमारत बनाने के लिए आता है, सना किसी चीज को फनी महारत से बनाने के लिए, और इत्तखज़ा दो मफूलों की तरफ मुतद्दी होकर बनाना, यानी इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। आगे देखिए लफ्ज मरसूस, रा स्वाद स्वाद, सीसा पिलाई हुई दीवार, मरसूस मफ़ऊल का वजन है, दो चीजों को बाहम मिलाकर जोड़ देना। लिखिए जरा, अब बिल्कुल रिलैक्स होके सुनिए, मरसूस चंद चीजों को आपस में ऐसे मिला देना कि वो एक ज़ात हो जाए, यक जान हो जाने के मानों में, मिलजुल कर इकट्ठा होने के मानों में। तो यहाँ मरसूस का लफ्ज असल में सांस से है, सांस, ये दूसरी सांस नहीं है, घबराए नहीं, पता चला इधर ही गड़बड़ हो गई। सॉस, सॉस कहते हैं शीशे को, मरकरी कहते हैं शीशे को अरबी में। आपको तो सबसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, जब बड़े बड़े पुल बनते हैं, या आपने कभी देखा, या यूरो ट्रेन जिधर से गुजरती है, पानी के अंदर है वो पूरी टनल, तो उसके अंदर ये ऐसी चीजें डाली होती हैं कि जिसपे पानी का भी असर ना हो। तो शीशा सास है, बुनियानु मरसूस, एक मजबूत दीवार, गोया के उसको शीशा मिला दिया गया है, और किसी को मजबूत करना, जोड़ना। और कभी आपने इमाम साहब से सुना हो, खास तौर पे इमाम सुदेस का बड़ा मशहूर है, जब जमात खड़ी कराते हैं तो क्या कहते हैं, तरासो फिस सला, तरासो नमाज में बाहम मिल जाओ, ठीक है। इसी तरह तरासी सुल मराती, औरत का निकाब को मजबूती से बांधना, ठीक है। और जब इसको तरसुस कह देते हैं तो इसमें मुबालगा और बढ़ जाता है। अरबी जुबान में लफ्ज़ जोड़ने के देखिए मुतरादिफ, ये सारा कुछ जल्दी से लिख लें ताकि आप इस लफ्ज़ की डेप्थ में जा सकें। वसला जोड़ने का ही काम लफ्ज़ है, वयक़ुना मा अमरल्लाहु बिही युसला, इसी से उर्दू में आप बोलते हैं ना विसाल, वसल पोइट्री में और फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होता है। फिर खसफा, आदम और हवा के जिस्म से जब कपड़े उतरे थे तो उसके लिए क्या लफ्ज आया था, यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और रस्सा यहां आ गया रास्वाद स्वाद इसी आयत में है। फर्क देखिए, यहां बुनजानु मरसूस आया, मरसूस की जगह यहां वसल का लफ्ज क्यों नहीं आया। वसल आम मिलाने और जोड़ने को कहते हैं, आप ये टेबल साथ साथ जोड़ दें, ये वसल है, ठीक है। खसफ क्या है, जोड़ना और चिपकाना। एक कागज के ऊपर बच्चा एक्टिविटी बनाता है, गम लगाता है, इधर से उधर जोड़ के उसको जोड़ देता है, ये है खसफा, चिपकाना। जन्नत के लिए भी यही लफ्ज है, जन्नत में जो पत्ते आदम और हवा जोड़ रहे थे। रस्सा का लफ्ज वो लफ्ज है जैसा कोई और लफ्ज नहीं है, जोड़ने के लिए दो चीजों को जोड़ना और मसाले वगैरह से वेवस करना। इन सारी चीजों को सोचिए और जहन में लाइए, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आप देखिए कि यहां से हम बिल्कुल आप मुतमईन होकर अपने तसव्वुर में लाइए कि यहां बुनियानुम मरसूस का लफ्ज क्यों आया है। कुरान की एक आयत है, आयत 107 है सूरह तौबा की, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन व इरसाद व इरसाद लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफुन्न इन अरदना इन इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गरज के लिए कि दावते हक को नुकसान पहुंचाएं, ये मकसद नोट कीजिएगा, और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डालें, और बजाहर इस इबादतगाह दिखने वाली, यानी वो असल में इबादतगाह नहीं थी लेकिन देखने में लग रहा था कि वो इबादतगाह है, इसको उस शख्स के लिए कमीन गाह बना दें, यानी छुपने की जगह, जहां जंगों में अमूमन मोर्चा बंदी लिख लें, यानी बजाहर उसका मोटिव कुछ और था, जो इससे पहले अल्लाह और रसूल के खिलाफ बरसरे पे इकार हो चुका है। आपको नाम याद आता है कौन सा शख्स था वो, हजरत हंजला का बाप, अल्लाह अकबर, अबू आमिर फासिक। और वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी और चीज का नहीं था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। मस्जिद दरार, नबी सल्लम के दौर में एक ऐसी मस्जिद बनी थी जिसको क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उन बनाने वालों की रुसवाई का ज़रिया बनाया। पहले तो दुआ करें कि अल्लाह हमारी किसी दीनी कोशिश की असल ये ना हो। चूँकि हम ये कोर्स अपनी इस्लाह के लिए कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले फ़िक्र होनी चाहिए कि बाहर मस्जिद का बोर्ड लगाने से सैनमा घर मस्जिद नहीं बन जाता। कुछ कोशिशें जो बज़ाहर दीन की लग रही हैं, करने वालों को भी नहीं पता होता, वो भी दीन समझ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो मस्जिद दरार की कैफियत बन जाती है। और चूंकि हर चीज़ के मुतरादिफ़ ले रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम दीवार के मुतरादिफ ना लें, यानी यहाँ कानहुम बुनियानुम, बुनियान का लफ्ज़ आया दीवार के लिए, नोट कीजिएगा ज़रा चंद लफ्ज़, अरबी जुबान में दीवार के लिए कितने लफ्ज़ आए हैं, पाँच। नंबर एक जिदार, जीम दाल रा से, सूरत काहफ में आप पढ़ते हैं, वामल जिदारु फकान अली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना। ठीक है, दूसरा लफ्ज है सद। सद ये भी देखिए सूरह कहफ में ही आया है। फहल नजलु लका हरजन अला अंता जला बैनना व बैनहुम सद्दा। ज़ुल्क़रनैन ने जो दीवार खींची थी उसके लिए अरबी में लफ्ज आया सद। तीसरा लफ्ज है रदीमा, रदमुन से रा दाल मीम। मजे की बात देखिए ये भी सूरत कहफ में। अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं सूरत कहफ भी पढ़ा दूं। ये फितनों की दीवारें हैं, फितनों के आगे बंद बांधने पड़ेंगे, जिदार भी बांधनी पड़ेगी, सद भी लगाने पड़ेंगे, रदम भी होगी। और चौथा लफ्ज है सूर, फदूरी बबई नहुम बिसूर लहू बाब। ये किधर है, कौन सा मुकाम है ये? सूरत अल हदीद, बीच में एक दीवार, पुल सरात और उसकी तरफ की इशारा। एक और लफ्ज है बुनजान जो हम पढ़ रहे हैं, इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना वली आयत में कान्नहुम बुनजानुम मरसूस। फर्क लिखिए, जिदार कहते हैं चार दीवारी को, तो दीवारों की एक किस्म सिर्फ चार दीवारी। किसी मकान या अहाते की दीवार, यानी किसी घर की जो बैरूनी दीवार होती है ना, उसको जहन में रखिएगा। सद कहते हैं दो चीजों की दरमियानी बनाई हुई दीवार जो रोक का काम दे। अब आपको समझ आ रहा है सद्दा क्यों कहा था, बस रोक बन जाए हमारे और याजूज माजूज के बीच में। रदम कहते हैं रदिम, डैम सुने लफ्ज, रदिम के लफ्ज में डैम लिख लिए। ऐसी सद जिसके सब रखने अच्छी तरह बंद कर दिए जाए। अब अक्सर सुनते हैं इंडिया ने अपने डैम्स खोल दिए, पाकिस्तान में पानी आ गया, या पाकिस्तान ने खोल दिए तो इंडिया में सैलाब आ गया, यानी डैम को रदम कहते हैं। फिर सूर, ये सूरतें जो है ना इसी से, फसील चार दीवारी, बुलंद दीवार जिसको फांदा ना जा सके, जैसे पहले दौर में किलों की दीवारें होती थी। और बुनियान या पे, ऐसी दीवार या तामीर जिसके अज़ा मजबूती से आपस में फंसे हुए हों। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला इन आयतों में उम्मते मुस्लिमा को एक पसंद की बात बताते हैं। अब आप अपने लिए जरा अमल के नुक्ते लिखिए। थोड़ा सा मैं गौर व फिक्र कराऊंगी आपको, जो पढ़ा है कुछ भी ना, बस आप सुनेंगे और लिखेंगे और गौर व फिक्र होगा। ये आयत बहुत ही अहम है, सामने सिर्फ आयत खोल दीजिए तर्जमे के साथ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह सुबहान तआला की पसंद के वो लोग हैं जो इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह सुबहान तआला ने इस आयत में अपने फेवरेटीज़ का जिक्र किया है, और ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के दीन के रास्ते में, अल्लाह के काम में सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। पीछे बात थी कॉलो फेल के तजाद की, आई टू और थ्री। क्यों? इसलिए कि लोगों के कॉल और फेल का तजाद सारी कॉज को मुतासिर करता है, सारा सिस्टम कोलैप हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। लीडर कुछ और प्लान कर लेता है, ड्यूटीज आपकी लगती हैं और आप आते ही नहीं। अल्लाह सुबहान तआला ने इस आयत में हम सबको बता दिया कि अगर तुम रियल में अल्लाह के स्टैंडर्ड पे पहुंचना चाहते हो तो फिर कान्नहुम बुनयानुम मरसूस। यहां आपने देखा कि लफ्ज़ सफन आया, जमे हुए, ठुके हुए, कोई दराड़ नहीं, कोई उंगली नहीं डाल सकता, कोई रखना नहीं है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड। और मरसूस कैसे हैं कि देयर इज नो आइडेंटिटी प्रॉब्लम, मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम, मैं कैसे। आप इसको जरा सा समझिएगा। देखिए दो तरह की चेंजेस आपने साइंस की बुक में पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है। एक होती है फिजिकल चेंज, कैसे नमक और रेत को मिला दें और एक डब्बी में डाल दें, बिल फर्ज। आप अलग करना चाहें इसका आसान तरीका क्या है किसी को पता है? नमक और रेत मिक्स करके एक डब्बी में डाल दी और गलती, ओहो अब क्या करें, पानी डाल दें, नमक पानी में घुलेगा, वो नमक वाला पानी जाके खाने में डालें, रेत सारी नीचे बैठेगी। लेकिन एक चेंज और होती है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और उसकी सबसे मशहूर मिसाल आपकी भी साइंस की बुक में आती होगी और मेरी भी यही थी, H2O, H2 हाइड्रोजन दो हिस्से और ऑक्सीजन एक हिस्सा। आप कहते हैं ऑक्सीजन जलती है और हाइड्रोजन जलाती है, दूसरे लफ्जों में के लिए ऑक्सीजन बहु है और हाइड्रोजन सास है, और जो भी आपका दिल चाहे जिधर आपका दिल चाहे उधर सेट कर ले। चले, जलना जलाना दोनों का काम है, खुश रहें आपस में, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो क्या बने? पानी जो आग बुझाता है। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। अब दोबारा आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जिनमें फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज आए। अमूमन कुरान पढ़ के हमारे अंदर कुछ फिजिकल चेंज आने लगते हैं, लेकिन अंदर से केमिकल चेंज हम नहीं आने देते। वो अना हमारी खड़ी रहती है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे अच्छा, सेल्फ प्रोजेक्शन, मुझे मशहूर करो, मेरा नाम लो, मैं किधर, वेयर आई एम, वेयर डू आई स्टैंड, मेरी किधर जगह, भी इधर मुझे बताइए जरा। अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो मान लीजिए कि कुरान का रंग बड़ी जल्दी उतर जाएगा। थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं तो फिजिकल चेंज आता है, ये भी लिख लें, और पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे, तो फिर केमिकल चेंज होगा। दूसरों को एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा एक बात बताते जाएं, आपका अपना अमल बढ़ता जाएगा। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है कि जब वही का करंट उनके अंदर दौड़ाया गया तो वो एक और ही चीज बन गए, मुख्तलिफ चीज बन गए, वो ना रहे जो पहले थे। कैसा चेंज आया? ताल्लुकात बदल गए, रहन सहन बदल गया, प्रायोरिटीज बदल गई, तरजीहात बदल गई, एक नई चीज बन जाता है मोमिन कुरान पढ़ के। गुरबा बन गए, अजनबी बन गए, एलियंस बन गए, कोई एक लफ्ज लिख ले, मोमिन बन गए, अल्लाह के फरमाबरदार बन गए। सारा मुआशरा, सारा खानदान दूसरे अजबे, और ये कुछ और है, बल्कि युकातिलूना। देखिए अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा, आयत पे नजर रखिए जरा, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद है जो कुरान पढ़ते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युसल्लीना या युसल्लूना, अल्लाह को वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। ये भी कहा जा सकता था कि अल्लाह को कुरान पढ़ने वाले अच्छे नहीं लगते, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने वाले नहीं अच्छे लगते, और बदले ही ना, सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं अच्छे लगते कि फोहश और मुनकर भी ना जाए, क्योंकि इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, 21वें पारे की पहली आयतों में। तो क्या पता चला? युकातिलून, जिहाद की चोटी, एक्सट्रीम। देखिए, इल्मी जिहाद भी जिहाद है, तबलीगी जिहाद भी है, ये सब तैयारियां हैं युकातिलून की। असल आप कह सकते हैं कि इल्मी, तबलीगी, इबादती, ये सारी स्टेप्स हैं, लेकिन जो ऊपर जाके मंजिल है ना, वो युकातिलून है। अभी शायद को अगर आप कुफार की नजर से पढ़ेंगे तो आप परेशान, शर्मिंदा, लेकिन इस पे बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दी। जो लोग कुरान को एस एन आउटसाइडर पढ़ते हैं ना, बाहर वाला, उनको तो ये आयत बिल्कुल हजम नहीं होगी, और अगर आप इसको एस एन इनसाइडर पढ़ते हैं तो आपको कुरान बड़ा प्यारा लगता है। और कुरान क्या कहता है? उदखुलू फिस सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब देखिए, जब गाड़ी में आप जाते हैं रात को कहीं, तो जो आगे गाड़ी की लाइट्स हैं ड्राइवर को रास्ता दिखाती हैं, लेकिन सामने से आने वाली ड्राइवर की आंखों में पड़ती है, क्योंकि सामने से आने वाले इस गाड़ी में नहीं बैठा हुआ। लिखिए, ये आपके बच्चों के सवालों का जवाब है। जब आप इस्लाम की गाड़ी के अंदर बैठ के इस्लाम को देखते हैं ना, रोशनी है ना, नूर, गाड़ी की लाइट को जहन में लाइए, तो कुरान आपको रास्ता दिखाता है। जालिकल किताबु ला रैब फी हुदल मुत्तकी, जिंदगी के हर रुख पे कुरान आपकी मदद करता है। लेकिन जब आप गैरों की ग्लासेस लगाकर कुरान को पकड़े, तो बिल्कुल वही हाल है कि आपकी आई साइट ठीक है, लेकिन किसी की आई साइट जरा चेक कर रहे हैं आप ग्लासेस कैसे लगते हैं, और आप वो लगाएं तो आपको तो घूमती फिरती दिखेंगी तस्वीरें। जब हम गैरों की नज़र से कुरान पढ़ते हैं ना, और जब अल्लाह से तो गैरियत हो और कुफार से अपनाइयत होगी, तो फिर आपको कुरान समझ नहीं आएगा। अल्लाह के बंदे बनकर कुरान को पढ़ना है। अल्लाह कहता है युकातिलू नफी सबील ही सफ़ा, जान निछावर करने के लिए मैदान जंग में आ जाना। ये है छोटी इस्लाम की। बाकी सीढ़ियाँ ठीक है, अमूमन बात की जाती है नफ्स का जिहाद, जिहाद बिल लिसान, माशरे से जिहाद, रस्म व रिवाज से जिहाद। हम ख़ुद भी इस पर बहुत बात करते हैं। आप अमूमन इन सारे जिहादों की जब बात करते हैं ना, रिश्तेदारों से जिहाद, माल से जिहाद, मोहब्बतों का जिहाद और दौलत का जिहाद, सूद छोड़ दिया क्या करें फिर अब हमें थोड़ा ही कमाना है, ये सब सीढ़ियां हैं, दे आर स्टेयर्स। अब जो मैं आपको बातें बता रही ना, इस पर आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ बना के लानी है इंशाल्लाह, जितने भी दिन लगा लें आई डोंट माइंड। ये स्टेप्स हैं, कुरान हमें जो मंजिल दिखाता है ना, वो युकातिलूना फी सबीली ही है। और दीन फैल नहीं सकता, चेंज आ नहीं सकता जब तक आप सफन की कैफियत में नहीं आ जाते। ये एसिड टेस्ट है, युकातिलून जाना, ये एसिड टेस्ट है। कभी बड़े सख्त टेस्ट जब केमिस्ट्री की लैब में कराए जाते हैं, उसमें तेजाब यूज होता है एसिड्स, इस पे आके हम फेल हो जाते हैं, इस पे आके हमें मुश्किलात आने लगती हैं। तो कुरान आपको दिखाता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। और जब आपकी ज़िंदगी में जद्दोजहद शुरू होती है ना, असल मज़ा भी उसके बाद ही आता है कुरान पढ़ने का। देखिए फ़ौजियों की ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है, सर्दियों में उनको खुले बर्फ़ों पे निकाल देते हैं जाओ भागो, और गर्मियों में मोटे कपड़े पहना के धूप में कहते हैं चलो सख्त जान। ये कुरान आपको मुझे सख्त जान बनाता है, तभी तो फिर हम वो दीवार बनेंगे जो बुनियानुम मरसूस होगी। और जैसे कि अभी आप लोगों ने भी बात की थी कि जब भी कभी ईंटें बनेंगी तो उनको प्यार से छोड़ देंगे। पाकिस्तान में भट्टे का लफ्ज़ सुना, भट्टों में क्या होता है, कच्ची मिट्टी की ईंटें होती हैं। हमारे अपने फैमिली में कुछ लोगों के थे तो इत्तेफाक हुआ देखने, कच्ची मिट्टी से बिल्कुल आम मिट्टी जो होती है ना उसकी ईंटें बनाते हैं, एक सांचा होता है उसमें मिट्टी डाली जाती है वो बनता है, फिर ये जो चिमनी सी दिखती है ना ये असल में इसका एग्जॉस्ट है, इसके नीचे घट्टे होते हैं उसमें कच्ची मिट्टी रखी जाती है, जैसे आप ओवन के अंदर चिकन रखें कुछ, फिर उसको आग लगा देते हैं, खूब तेज फर्नेस, इतना तेज कि वो भट्टी जो हम तो कहते थे ना ये भट्टा है, लेकिन वो भट्टी की चिमनी जैसे प्रेशर कुकर की स्टीम निकलने की जगह, फिर उसको कितना पकाते हैं, पकाई जाते, जब वो सुर्ख ठीकरी की तरह हो जाती है ना फिर आग बंद होती है। ये है बुनियान मरसूस, ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो जिहाद की ताल, अल्लाह के दीन को बुलंद करना, ये एक सबीलुल जन्ना करके पूरा नहीं समझ आ जाता, इसमें बंदे को खपना पड़ता। इतना कुरान पढ़ के आप पीछे हो जाएंगे और आप खास तौर पे फिर दूसरों को पढ़ाने लग जाएंगे ना, कच्ची ईंट हैं आप, बहुत बड़ी इमारत नहीं बनेंगी। इस्लाम कहता है कि तुम कैसे बनो, तुम्हारा अकीदा एक हो, मकसद एक हो, और कोई मकसद नहीं हो आपका अल्लाह का काम करने का। आप देखिए मकासिद बहुत सही है, जो भी ऊपर आयत नहीं पढ़ी, मस्जिद थी ना मस्जिद दरार, लेकिन अंदर चार जुर्म थे, इरसाद था, तफरीक थी बैनल मुस्लिमीन, और हमारी मस्जिद में आधे और उधर चले जाएं। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि जगह जगह इमारतें बनी हो। आप पूरे इस्लाम को खोलकर देखिए, पूरे शहर में एक जामे मस्जिद और गली के कोनों पे मुसल्ले, बस रोज नमाज पढ़ो मुसल्ले में, गली के लोगों का हाल बताओ तुम्हें, हफ्ते में एक दिन जाओ जामे मस्जिद में कि पूरे शहर के लोग उधर हैं। पहले शहर छोटे थे, आप कह सकते हैं ये रॉज वेल है ना, इसमें बस एक जामे मस्जिद होनी चाहिए और हर जुमे को उधर जुमा पढ़ें, इसको कहते हैं जामे मस्जिद। एक अल्फाटा में हो, एक मरियाटा में हो, और जिधर भी हो एक होनी चाहिए, इस्लाम का मिजाज है। हर रोज़ अपने गली के लोगों का हालचाल पूछ लो, छोटी छोटी मस्जिदें होनी चाहिए। ये तो हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाकर लोगों को परेशान किया, कितना माल लगा और आज मेंटेनेंस कितनी और सारी खाली इल्ला माशाल्लाह। फिर उसके बाद इस्लाम चाहता है कि साल में एक बार तुम किसी खुली ईदगाह में मिलो, पूरे शहर के लोग खुली जगह पे जाकर ईद पढ़े। ये मरियाटा की भी जामे मस्जिद और अल्फोर्टा की भी और ABCD सारी मस्जिद वाले खुले हॉल में जाएं या ओपन एयर में जाएं और वहाँ ईद पढ़ाएं, क्योंकि आप सारे शहर वाले साल में एक बार तो मिले, और उसके बाद ज़िंदगी में एक बार एक ऐसी बड़ी मस्जिद में जाओ जहाँ सारी दुनिया के मुसलमानों को मिले, ये है बुनियानो मरसूस। आज गली गली जामिया, गली गली जो भी आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं है। हज़रत उमर फारूक के दौर में कोई नई मस्जिद नहीं खुल सकती थी, कोई दीनी इदारा नहीं खुल सकता था, सब गवर्नमेंट के अंडर थे, उनकी तनख्वाहें उनके वज़ाइफ मुल्क के ख़जाने से जाते थे, जाके पढ़ी। आज भी कहते हैं कि इल्म पर और हिफ्ज़ के शोबे में ख़ास तौर पे हज़रत उमर का बहुत बड़ा एहसान है। देखिए ना, जब आपने एक पूरे इलाके में एक जामे मस्जिद बनाई तो ख़र्चा बट गया ना, डोनर भी मिल जाएंगे, उनके टैक्सेस से भी काम हो जाएगा, और एक इमाम को एक अच्छी खासी पे देंगे, गवर्नमेंट देगी, और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी में सर उठा के चलेगा वो इमाम। ये तो नहीं ऐलान किया जाएगा इमाम साहब को पे देनी है, प्लीज़ डोनेट कीजिए, शर्मिंदगी है। क्योंकि जब आप अल्लाह के काम करते हैं तो बंदों से क्यों ले, आप उनका खाते हैं, रखें अपने पास, और अगर अल्लाह कफील है, अल्लाह देगा, तो अल्लाह से तो लेना है। तो खर्चे कम हुए, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, सारी मस्जिद यूज़ होगी ना। और उसके बाद वो मस्जिद सिर्फ जुम्मे के लिए नहीं होती जामे मस्जिद, आपका वो वेडिंग हॉल है, शहर में जो शादी होगी आप जाकर उस जामे मस्जिद के हॉल में पढ़ेंगे। ये है बुनियानो मरसूस। मुसलमान ऐसे नहीं कि मस्जिद में जाना हो तो और चेहरे दिखे, जॉब पे जाएं तो कोई दूसरे टाइप के मुसलमान देखे, और शादियों में और पार्टियों में जाएं तो वो दिखे जिनको पता ही ना चले कि सलाम कहना है कि हाय बाय कहना है। दैट इज़ द पॉइंट। आज के दौर में जो दीन के नाम पे भी हम काम करते हैं वो भी ठीक नहीं करते, यानी हम नेहारी पकाते हैं और सही तरीके से नहीं पकाते, हम कड़ी पकाते हैं और हम सही तरीके से नहीं पकाते, तो अच्छी कैसे बने। आज आप देखिए कि कितने मदरसे, कितने मस्जिदें, आप फिगर्स ले लीजिए, आपको पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे, हर साल हजारों नहीं लाखों की तादाद में जामियात में से लोग तैयार होकर निकल रहे हैं, और इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करती लेकिन मेजॉरिटी पे बात करूं, कुंद छुरियां बन के निकलते हैं, अपने अपने मसलक की धाक जमाने वाले, अपनी अपनी फिक के राग लापने वाले, और बहुत अच्छे हाफिज कुरान, बहुत अच्छी तजवीद, बहुत अच्छी ग्रामर, लेकिन इस्लाम का रंग किधर है। एक मस्जिद नबी ने जो प्रोड्यूस किया वो अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक, क्या छत थी उसकी, ऐसी खूबसूरत छत थी उसकी, ये आप जैसी खूबसूरत कुर्सियाँ थी मस्जिद नबी में, इतने प्यारे गोरे गोरे टेबल थे उधर, ये प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन, ये मेरे लिए जो आपने जगह रखी, ऐसी थी मस्जिद नबी, लेकिन प्रोड्यूस क्या हुआ। दैट इज़ द क्वालिटी। बुनियानो मरसूस का मतलब क्या है कि तालीमी इदारे या मस्जिदें इस्लाम के नाम पे जो बने, जब लोग अंदर से निकले ना तो कूट कूट के, कूट कूट के उनको बुनियादों में डाल दो खुश, फ्रंट पे डाल दो खुश, शीशा बना दो खुश, और आप उनको कैंटीन की दीवार बना दो तो खुश। वो कहते हैं हमें क्या लगे, हम तो मरसूस बन गए। ये लफ्ज़ आज भूलिएगा नहीं कि मरसूस कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को ऐसे जोड़ो कि उसके आसान बाद में मिले ना। ग्राइंडर में आप 10-12 चीज़ें डाल के पीस देते हैं, गर्म मसाला बन गया। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। और जो कहते हैं हमें रिकग्नाइज करें, तो सिर्फ अल्लाह से मांगिए, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे कोई यहाँ समझता ही कुछ नहीं, हमेशा मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, मुझे बताते नहीं, चुपके चुपके वो काम कर लेते हैं और फलां को तरजीह दे रहे हैं। अगर हम इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो लिख के रख लीजिए, ये कोई ज्योतिषी की बातें नहीं है, ये एक साहिब नज़र की बात है, ऐसा बंदा छट जाता है। आज छटेंगे आप या कल छटेंगे, वो बादल कभी नहीं बरसते जो खोखले होते हैं। लिखिए, दीन के साथ जुड़ने के बाद भी अगर आपको अपना ज़ाती तशख़्स पसंद है, सेल्फ कॉन्शियस हैं आप, माई डेजिग्नेशन, माई रिकमेंडेशन, तो आप कभी बुनियानुन मरसूस नहीं बनेंगे। आप बात बात पर नाराज़ होंगे, बुरा मान जाएंगे, आप चिढ़ेंगे, आप दूसरों पे शक करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, कैसे पता चले कि एम आई सेल्फ कॉन्शियस और नॉट, क्योंकि ये सेल्फ होने का तसव्वुर तो इंसान के साथ है। तो इसका सबसे आसान नुस्खा, जैसे कोरोना है कि नहीं, रुई का एक फाहा सा नाक में डाल के चेक कर लेते हैं ना, आपको अगर ये देखना है ना कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है या आप एक दीन के काम पे जुड़े हुए हैं, यानी मिसाल है कि आप अपना काम कर रहे हैं कि दीन का कर रहे हैं, सिंपल सा जुमला है। टू बी रिकग्नाइज्ड, टू बी रिकग्नाइज्ड, इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी आपको बड़ी प्यारी होगी, माई नेम, पता चले मैं हूं ना, मैं पढ़ाती हूँ।